के हमारू गाँव आवा भाई बहनों सुना दो हमारू मूल के हमारू गाँव आवा भाई बहनों सुना दो एकाहे कश्मीर लोला हाथ ये वाली वाणी रेडियो का साथ एकाहे कश्मीर लोला हाथ ये वाली वाणी रेडियो का साथ चिखटी मीठी लगा दो
हमारू मूल के हमारू गाँव आवा भाई बहनों सुना दो हमारू मूल के हमारू गाँव।
हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट शीतल।
और मैं हूं ब्रिजेश, और हम सब आपका स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में।
दोस्तों, कहते हैं कि पहाड़ी जीवन बड़ा कठिन होता है। पहाड़ों में रहने के लिए पहाड़ जैसे मजबूत शरीर और पहाड़ जैसा दृढ़ विश्वास होना भी जरूरी है।
अब आप सब सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों, पहाड़ी लोग कोई अलग तो नहीं होते। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि वे कितने सारी प्राकृतिक कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल ब्रिजेश, अगर ऐसा न होता तो आज पहाड़ के पहाड़ खाली हो जाते, लेकिन लोगों ने कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया।
बिल्कुल शीतल जी, और साथियों आपको मिलाते हैं हरीश किनवाल जी से, जो कि गोमती प्रयाग के हैं, और उनकी जुआनी जानते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा में क्या क्या देखा।
मेरा नाम हरीश और ग्राम सोनाली पोस्ट ऑफिस कोटनारा ब्लॉक कर्णप्रयाग से।
जी, तो आपका जो गांव है, यहाँ काफी आपदा के कारण जब आपदा आई थी 16 जून 17 जून को, तो इसमें काफी यहाँ नुकसान हुआ है।
जी सर।
तो आपदा आई थी, तो आपने उस वक्त क्या देखा यहाँ?
सर, वहाँ पे तो इस समय इस प्रकार की सुबह 5:30 बजे ये घटना हुई वहाँ पे, और काफी हबड़ा तबड़ी मची हुई थी। लोग अपनी जान को बचाने के लिए काफी इधर उधर कर रहे थे, और चारों तरफ से गाँव वाले घिर चुके थे। इधर से भी मलबा आने शुरू हो गया, उधर से भी साइड से भी मलबा आना शुरू हो गया, तो गाँव वाले बीच में फंस गए थे। तो जो मीन वाला जो फ्लड था, जो जहाँ से मीन था, तो वहाँ से सड़क तो पास कर नहीं सकते थे लोग। तो उस समय ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी मदद की, हम जो युवा वर्ग के लोग हैं और थोड़ा जो हमारे प्रतिनिधि लोग थे, तो हमने शासन प्रशासन को भी हम ही ने इन्फॉर्म किया था कि इस प्रकार की घटना यहाँ पे होगी, तो कुछ सहायता यहाँ पे मिल सकती है, कुछ ऐसी आपदा में जो मिलती है। तो उस समय इस प्रकार से गांव में काफी वो हो गया था, और हम लोगों ने गांव वालों को एक सुरक्षित स्थान पे ले गए, और वहां पे कुछ समय के लिए बारिश बंद हो गई थी, तो अच्छा। उसके बाद शासन प्रशासन वहां पे आ चुका था।
अच्छा, तो घटना हुई है, तो इसमें नुकसान की बात आपने जैसे बताया, खेती
सर, नुकसान तो इसमें खेती बाड़ी और लोगों के 30-35 लोगों के मकाने भी टूटे हैं, अभी भी वो लोग किराए के कानों में रहते हैं। काफी नुकसान वहाँ पे हुआ है, और मवेशियों की क्षति भी वहाँ पे हुई है, काफी लोगों के गाय भैंस और बैल, वो मतलब 30-35 परिवारों के जो मकान थे वो तो पूरी तरह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लोगों के मकानों पे इधर उधर बाजारों में कमरे के मकानों पे रहते हैं, और इस प्रकार से मतलब
आप क्या मानते कि क्या कारण ऐसा है, आपके गांव के लोग क्या ऐसा कारण मानते कि ये जो इतनी बड़ी आपदा आई, इसका क्या कारण मानते हैं?
सर, अभी तो फिलहाल सभी लोग उत्तराखंड में पुरात्रास्थिति का हुआ था, केदार घाटी में हुआ था, इधर बद्रीनाथ साइड में हुआ था, और इधर एक गांव इधर भी है घाट साइड, वहां भी हुआ था, और सोनाली जो उत्तराखंड में 5वें नंबर पे शायद डाल रखा है, और देवी आपदा मानते हैं इसको।
बहुत बहुत धन्यवाद
जी सर।
और अब सुनते हैं नंदा देवी जी की बात।
जी, आपको नो?
नंदा देवी।
अच्छा, आपको गांव को नो?
डोंगलाली।
जी, जिन के आपदाएं थे 16-17 जून को, तो वे वक्त आपन क्या देखे?
हमने बहुत भयंकर स्थिति देखी।
अच्छा,
और ये सोनाली भी देखी, तो सुबह सुबह टाइम पर बहुत भयंकर स्थिति देखी, बहुत घबराए हम लोग, बहुत कुछ होने वाले।
जी, तो मतलब क्या क्या नुकसान ही बाढ़ जो आपदा आई, क्या नुकसान आपका है?
मकान गई और घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया, टेंट भरे यहाँ लोग अभी तक। फिर सरकार ने टीन सेट बढ़ा लता, अभी तक कुछ ही नहीं हुए, टीन तो मिले यहाँ से पर बड़े नहीं, और यू हमारे गांव सामने भाई को भी टीन सामान सब कुछ आए, पवन आए बनवाने आए, पता नहीं कब गए।
अच्छा, मतलब वो एक बात जो जब आपदा आए, मतलब तो नुकसान मजन की खेती बाड़ी को क्या कत का नुकसान हुआ?
खेती बाड़ी बहुत बर्बाद हुई, फसल सब कुछ है।
अच्छा, ये जो धन पशु होना युमा तो कोई नुकसान हुआ?
हाँ हुई।
अच्छा, काफी
बहुत नुकसान।
अच्छा, कति मतलब कति परिवार ये जो ये प्रभावित हुए?
हमारे एक तो ये इलाका में 2-3 परिवार है, हमारे ग्राम सभा में 2-3 है, पर जेटी कंडारा सोनाली इंद्र तो बहुत हुई,
बहुत हुई। क्या मान देखी, मतलब क्या कारण रहे बोलो ये आपदा है?
कारण तो हम भी कुछ नहीं समझ सकना, भी कोई ये नहीं बना केल बोली की सवेरे टाइम पर अगर जब यू घटना हुई तो वह ये हवा में कोई बदबूजन है, कोई ये नहीं बना।
अच्छा,
बदबूजन भी है, पता नहीं क्या कारण से बोले अभी बदबू किंग है सोनाली जेठ कनारा साइडा बना से यू वह जब हमने घटना हुई तो बदबू से नया हवा में पता नहीं क्या क्या हुई यू
मतलब यू कारण मानने लगे कि कुछ देवी आप
देवी देवताओं में प्रकोप फिर लोग ज्यादा अलभ्रष्ट ज्यादा करना धार्मिक स्थल लुकारा घूमना का स्थल बढ़े
जी बहुत बहुत धन्यवाद
तो दोस्तों जाना आपने कि प्रकृति ने अपना कहर किस तरह से बरसाया वैसे तो पहाड़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर है लेकिन जब प्रकृति नाराज होकर अपना कहर बरसाती है तो न जाने कितनों के विश्वास चकनाचूर हो जाते हैं करोड़ों सपने बिखर जाते हैं और जान माल का नुकसान भी होता है तो इस स्थिति में जानकारी और मजबूत इरादे ही साथ देते हैं
बिल्कुल दोस्तों मानव ने जब तक प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखा तब तक प्रकृति भी हम इंसानों पर मेहरबान थी पर आज जब इंसान प्रकृति से ऊपर अपने व अपने स्वार्थ को रखने लगा तो ये तालमेल दिन ब दिन गड़बड़ाता जा रहा है तब से हमें लगातार आपदाओं का सामना भी करना पड़ रहा है
बिल्कुल साथियों आपदाएं केवल पहाड़ों में ही नहीं आती बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी आती है पर असल बात यह है कि हमें इनका सामना कैसे करना है इस बात की जानकारी न होने के कारण हम बहुत ज्यादा नुकसान झेलते हैं चाहे फिर वो हम पहाड़वासी हो या फिर मैदानी
तो दोस्तों इस बीच में सुनते हैं विनोद जी की बात जो सोनाली गोमती प्रयाग के रहने वाले हैं
जैसे सवेरे हुआ तो अचानक जो है कि बारिश तेज हुई तो गांव में पानी आने बैठ गया और एक जोर का धमाका हुआ गांव में मलमा आ गया इसमें खेतीबाड़ी का नुकसान हुआ और जानवरों का नुकसान हुआ वहाँ से ये मकानें टूटी और लोगों की जो सामान है वो सारा दब गया खाने पीने का सामान सारा दब गया फिर यहाँ पे जो लोग रहे हैं उनको इधर उधर ले जाने में तकलीफें हुई चारों तरफ से बाढ़ आ गई थी और उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए बड़ी परेशानी हुई तो ये देवी आपदा ही मान के मैं चलूँगा
मित्रों अभी सुनी आपने विनोद जी की बात जिन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक दैवीय आपदा थी
और अब बात करते हैं विनय बहुगुणा जी से जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं
मेरा गांव है रुद्रप्रयाग में नवासु है देखिए हमारे क्षेत्र में तो आपदा नहीं आई थी लेकिन जो केदार घाटी में जिस तरह का माहौल था मैं उस क्षेत्र में गया भी था और जिस तरह से मतलब जो आपदा थी जिस तरह से लोगों के रास्ते घर मकान बह गए और जो एक दहशत थी लोगों में तो वो स्थिति अगर देखें तो मतलब उसको प्राकृतिक कारण भी माना गया कई लोगों का धार्मिक कारण भी माना था लेकिन धार्मिक जो धार्मिक स्थितियां थी जो धार्मिक परिस्थितियां रही वो अपने स्थान पे लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अनियोजित जो विकास हुआ है उस विकास का ये प्रमुख कारण रहा है कि आपदा ही है और जिस तरह से देखें रास्ते जो पुराने रास्ते थे उन पुराने रास्तों का कहीं कहीं भी हमको पुराने रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो वो भी है कि हमने रास्तों में गदेरों में मकान बना दिए अब बरसात जब आएगी हो सकता है कि पिछले 5-6 सालों में इस बार तेज बरसात आई है लगातार बरसात तो सबसे बड़ा बात जो बात रही है इस आपदा की वो है अनियोजित विकास हमने कोई प्लान नहीं किया है अभी तक कोई सिस्टम हम बना नहीं पाए हमारे राज्य को बने हुए 13 साल हो गए लेकिन इन 13 सालों में शायद एक मतलब ये जो बंदर जिस तरह से एक बंदर दौड़ होती है कि सारे एक तरफ दौड़ रहे हैं वो दौड़ है नकल है बाकी कुछ सिस्टम नहीं
तो दोस्तों ये थे विनय जी जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया और जाना कि आपदा का कारण क्या था
भूकंप भूस्खलन बादल फटना बाढ़ हिमपात भू कटाव चट्टाने खिसकना आदि आपदाएं पहाड़ों में ही अपना असर दिखाती हैं वहीं मैदानों में बाढ़ भूकंप सुनामी आदि भी करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है
दोस्तों देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रकृति भिन्न भिन्न तरीकों से जनजीवन प्रभावित करती है पर किस किस तरह से और कैसे फिर लोग इन आपदाओं से उभर पाते हैं या नहीं
ये सब हम जानेंगे इस प्रोग्राम के तहत तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं लद्दाख के निवासी पद्मा तासी से
पद्मा तासी जी ये जानना चाहेंगे जब 2010 में वहाँ पर बादल फटा तो क्या हुआ था थोड़ा सा पहले ये जानना चाहेंगे असल में क्योंकि आप वहाँ के बासिंदे वहाँ पर रहते हैं तो अगस्त 2010 के 5 और 6 तारीख को वहाँ पे मैं खुद या स्वयं वहीं पर ही था जिस गांव में मैं रहता था हमारे घर में भी जबरदस्त पानी घुस आया बाद में वो घर सारा गिर गया था तो हुआ ये कि हम डायरेक्टली इसको क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करके देखते हैं, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव जो असर जो है वो सीधा हमारे ऊपर पड़ने लगे, क्योंकि लद्दाख के हिस्ट्री में पहले इस तरह की क्लाउड बर्स होना, इस तरह की ज़्यादा फ्लडिंग होना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगस्त 2010 में उस फ्लड अनफॉर्चुनेट जो डिज़ास्टर आया उसमें 206 लोगों का जान ले लिया और 53 विलेजेस में नुकसान पहुंचाया, और हमारे वहाँ ऑल टुगेदर सारा मिला के रिन्यू विलेज जो है 108 ही है, 108 में से 53 में नुकसान पहुंच गया। और उसके बाद शुरू में हमारे संस्था जो RDY रूरल डेवलपमेंट एंड यू करके ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके साथ काम करते हैं, तो हमने शुरू में लोगों को तो रेस्क्यू करना के लिए एक्टिविटी शुरू करा, क्योंकि हमारे लकीली हमारे ऑर्गेनाइजेशन किसी के लोगों का साथ कोई ज़बरदस्त घटना नहीं हुआ, तो हम सब तैयार थे। तो हमने शुरू से ही लोगों को वहाँ से निकालना, हॉस्पिटल ले जाना, और इवन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हॉस्पिटल भी बुरी तरह फ्लड के चपेट में आ गया था, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होना पड़ा। हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उसमें सब कुछ रातों रात शिफ्ट करना पड़ा। तो फिर रेस्क्यू हो जाने के बाद हमने रिलीफ का काम शुरू किया, बहुत सारे संस्था जो हमारे अपने इंडिया के कोने कोने से आए वहाँ पे मदद के लिए, तो उनके साथ ऐसा पार्टनर हमने काम करा। तो शुरू में हमने बहुत जगह हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह हमने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करा। तो उसके बाद हमारा वहाँ के लोग है 70-80% लोग है खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो 53 गांव में फिर खेती बाड़ी का किसी का नाला जा चुका है, किसी का खेत जा चुका है, किसी का बगीचे जा चुका है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने थे। लेकिन फिर भी मैं बहुत पूरे इंडिया के और अब्रॉड जितने भी लोग उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि हर तरफ से इतना मदद आया कि रिलीफ के पार्ट में तो हमको बीच में फिर रोकना पड़ा कि अब ज़्यादा रिलीफ का मटेरियल हमें ज़रूरत नहीं है, अब प्लीज़ अब रिलीफ की ज़रूरत नहीं, आप संभल के इसको रख लो, खुदा ना खास्ता कुछ का और कहीं हो गया तो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगा करके हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अब रिलीफ की हमें ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, जैसे पद्मन तासी जी जब ये घटना हुई तो लोग क्या कहते हैं, आखिर हुआ क्या और क्या मानते हैं, मतलब मान्यताएं क्या है, कैसे हुआ, लोग इसको कोई कोई भगवान की कोई ऐसी वो मानते हैं या ये प्रकृति का कोई है, या लोग ये भी बोलते हैं कि ये कहीं हमारा भी इसमें दोष है, तो क्या मानते हैं लोग?
लद्दाख का जो डिज़ास्टर था वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ास्टर था, वो एक्चुअली तो मैन मेड डिज़ास्टर ही था, लेकिन हम किसी और के करियर को भुगत रहे थे वहाँ पर। बहुत सारे यूरोप में कहो या वेस्ट में कहो या कहीं भी जितने भी हम सो कर जो डेवलप कंट्रीज कहते हैं, उन्होंने एटमॉस्फेयर में इतने कार्बन एमिशन कर लिया कि हमें पूरे धरती का एटमॉस्फेयर या तापमान ही चेंज हो गया। तो हम जैसे लद्दाख में रहने वाले लोग, हमारे पास ना तो इन बड़े बड़े इंडस्ट्री है, ना हम बड़े बड़े धुआं और इस तरह के बहुत सारे गाड़ियाँ वहाँ पे होते हैं, तो हम तो नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला, हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा था कि एटमॉस्फेयर की डैमेज करे, लेकिन किसी और के करियर को हम भुगत रहे, इसलिए हम बहुत अनफॉर्चुनेट और थोड़ा अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था कि किसी और के करियर की वजह से हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप बहुत सारे गाँव में चले जाए तो आप पूछेंगे कि आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो लोग बोलेंगे ये तो हम लोग बहुत अब बिगड़ गए हैं, तो भगवान की वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, ये हमारा प्रीवियस लाइफ क्रेडिट, हमने कुछ गलत करा होगा इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं था, क्योंकि ये तो मैन मेड डिज़ास्टर था। क्लाइमेट चेंज में इतने चेंजेस आ चुके थे कि क्लाइमेट का बिल्कुल टेम्परेचर अगर एक भी ऊपर नीचे चले जाते तो इस तरह के डिज़ास्टर आना तो तय है, क्योंकि अभी ये ग्लोबल चेंज की वजह से, ग्लोबल क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी की वजह से तापमान में जो 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 चेंजेस आया है उसकी वजह से हमारा ग्लेशियर डिसअपीयर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दिख नहीं रहा है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे जब हम छोटे थे तो वो ग्लेशियर सारे में से ब्लैक पेजेस निकलने आने लगे हैं, तो ग्लेशियर तो है नहीं, बर्फ़ तो पार नहीं रहा है, अब हमें कुछ करना है तो ज़िंदा तो रहना है करके, तो फिर इस तरह की कुछ इंटरवेंशन हो रहा है वहाँ पर।
तो पद्मा तासी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इस तरह के चैलेंजेस और भी हमारे सामने हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए हमको आगे?
बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हम नेचर के बहुत क्लोज होते हैं, है ना, हमारे रिलीजन में भी नेचर ही जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे लद्दाख में और आपके उत्तराखंड में ज़्यादा
नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रहा है आज के डेट में, डेवलपमेंट के नाम पे, और इंसान का जो अपना जो खुदगर्ज जो है, नीड है, सेल्फिशनेस है, उसको फुलफिल करने के लिए नेचर के साथ हम बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो श्रोताओं, सुना आपने कि आपदा के समय इन्होंने क्या किया।
दोस्तों, वैसे तो आपदाएं हर जगह आती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा अधिक, क्योंकि लगातार होने वाली बारिश से भूस्खलन, चट्टाने खिसकना आदि पहाड़ों में ही होता रहता है।
शीतल जी, क्या आपने कभी सोचा कि ये आपदाएं क्यों और किस कारण आती होंगी?
हाँ, सोचा तो है और किताबों में भी पढ़ा है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव जनित।
बिल्कुल सही कहा शीतल जी आपने। भूकंप, बाढ़, हिमपात आदि आपदाएं कुछ हद तक प्राकृतिक हैं, और भूस्खलन, भूकटाव आदि मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत ही आते हैं।
दोस्तों, प्राकृतिक आपदा भूकंप की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे तीव्र गति का भूकंप सन 1803 में आया था, जो कि 8 रिएक्टर स्केल पर मापा गया था और जिसका केंद्र उत्तरकाशी था, और इस दौरान बहुत जानमाल की हानि भी हुई थी।
दोस्तों, आपदाएं तो प्रकृति का एक विनाशकारी और विकराल रूप है। आइए प्रकृति के दूसरे रूप पर भी थोड़ा अपनी समझ बढ़ाएं और मिलते हैं एक साथी से।
साथियों, अब साक्षात्कार में सुनते हैं अंशु शर्मा जी की बात, जो सीड संस्थान से हैं और आपदा की जानकारी दे रहे हैं।
नमस्कार, मैं दिल्ली से सीड संस्था से आया हूं और जलवायु और आपदा पर एक हमारा शोध कार्य चल रहा है, उसको देखता हूं।
अंशु जी, एक सवाल ये मन में आ रहा है कि वातावरण को समझने के लिए एक केंद्र यहाँ पे स्थापित किया, तो इसके पीछे सोच कैसे आई और कैसे आपने ये शुरू किया, थोड़ा वो जानना चाहेंगे।
हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में कई सारे हमारे भारत के राज्यों में बढ़िया बड़ी आपदाएं आईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और उनमें से कई सारी चीज़ें जलवायु से संबंधित थी, तो ये बात भी शुरू हुई कि साहब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे हैं क्या। और हमने ये देखा कि लोग इस बात से बड़ा भयभीत होते हैं पर समझते नहीं हैं। या तो वो धार्मिक समझ आ जाती है कि इस कारण हमने बुरे कर्म किए इसलिए हो रहा है, या फिर होता है कि साहब ये तो साइंटिस्ट बताएंगे, कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बताएंगे मौसम का आगे क्या होना है, आपदा वाले बताएंगे कि ये कैसे होना है, इंजीनियर बताएंगे कि मकान कैसे बने। और हमको उस बात को देख के बड़ी परेशानी लगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, क्योंकि मंगल पर यान तो भेजना नहीं। अपने गांव में, अपने शहर में क्या हवा चल रही है, कितनी नमी है, कितना तापमान है, अगर उसमें अचानक बढ़ावे उतराव आता है तो वो क्या अंदेशा दे रहा है कि आने वाले घंटों में या दिनों में क्या होगा,
क्या?
ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात हमें तो लगा नहीं कि है। और हम लोगों ने सभी ने अपने स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा भी है, आजकल भी बच्चे पढ़ते हैं, पर होता ये कि हम उसको पढ़ाई के तौर पर लेते हैं फिर उसको पीछे छोड़ देते हैं। जब वो रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल आने तब हम बोलते हैं भैया देहरादून से खबर आएगी, तब हम कुछ करेंगे। तो उस सोच को बदलने का ये प्रयास था। हमने कहा क्यों ना अपने गांव में, अपनी घाटी में, अपने मोहल्ले में समझें कि क्या हो रहा है, क्या उसमें कोई तब्दीलियां आ रही हैं। बल्कि तब्दीलियों से पहले बस यही समझें कि हो क्या रहा है,
क्या
हवा है, क्या पानी है, कितना आता है, सर्दियों में कितना है, गर्मियों में कितना है। फिर अगर इतनी समझ आ गई तो हम ये भी देख पाएंगे कि उसमें बदलाव क्या आ रहा है। अगर बदलाव पकड़ में आ गया तो हम समझ पाएंगे कि भाई ये बदलाव आपदा की तरफ ले जा रहा है, कि रोज़मर्रा की तकलीफ़ों की तरफ ले जा रहा है, उससे सुबटने के लिए, निबटने के लिए हमको क्या करना है। तो ये एक प्रयास है। यंत्र हमने लगाया है जो कि काफ़ी एडवांस्ड साइंटिफिक यंत्र है, पर ये एक शोध कार्य की तरह, ये शुरुआती यंत्र है। और कई जगह ऐसा होता है, सोच ये होती है कि साहब एक सिंपल चीज़ से शुरू करें और उसको बढ़ाते जाएंगे, हम उल्टा चल रहे हैं। हमने कहा ये तो स्टैंडर्ड यंत्र है, और आने वाले समय में इसको कैसे और सिंपल बनाते जाएँ, इतना सिंपल बना दें कि हर स्कूल की क्लास में बच्चे को समझ में आए कि कैसे हमको चीज़ें नापनी हैं, क्या चीज़ें नापनी हैं, और उनमें क्या बदलावों के लिए हमको अपनी नज़र और सोच खुली रखनी है। और जिस दिन उसको समझ आ गया कुछ गड़बड़ हो रही है, वो अपने टीचरों को, अपने घर में जाके लोगों को, अपनी पंचायत में बता सके, तो वह पूरा का पूरा गाँव तैयार हो सके। तो बजाय इसके कि हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पर, सरकार पर, देहरादून पर निर्भर रहें, क्यों ना वो सोच हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में आए, और यहाँ से हम इस पर बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
आगे इस काम को और आप बढ़ाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे सोच है, थोड़ा वो जरूर बताइएगा।
ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने छेड़ी कि आखिरकार अगर मौसम को समझना है तो इसी उद्देश्य से समझना है कि हम जो रखरखाव हमारा है, रहन सहन है, घर हैं, वो कैसे बेहतर हों। और अपने यहाँ की आपदा में भी अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर भवन जिनका नुकसान हुआ है वो पिछले 25-30 साल में बने थे, ज़्यादातर सीमेंट कंक्रीट के थे, तो हम बातचीत तो करते हैं कि साहब पुराने घर अच्छे थे, उसमें एक कंबल में सर्दी कट जाती थी, अब गर्मी भी ज़्यादा है और सर्दी भी ज़्यादा है, पर फिर भी बदलाव गलत दिशा में जा रहा है। और कंक्रीट में बुराई नहीं है, ठीक है बहुत ठंडा होता है बहुत गर्म होता है, पर वो कमज़ोर भी हो गया क्योंकि उसको सही तरह से इस्तेमाल करना हमको नहीं आया। और इतनी अच्छी चीज़ हमारे पास थी जिसको हम भूल गए। तो आपने जो बात की, हमने इस तरह के पिछले 15 वर्ष से हम लोग ये काम कर रहे हैं पुनर्निर्माण का। हमने लेह लद्दाख में काम किया जहाँ सर्दियों का तापमान -50 डिग्री चला जाता है, और हमने राजस्थान में बाड़मेर में भी काम किया 2006 की बाढ़ के बाद, जहाँ गर्मियों का तापमान 50 डिग्री +50 गर्मी में चला जाता है। तो हम 100 डिग्री की रेंज में हमने घर बनाए। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि हर जगह जो सबसे सबसे सरल और सबसे उपयोगी चीज़ निकल के आई वो वहाँ की लोकल मिट्टी थी। लद्दाख की मिट्टी से जो लद्दाख में घर बने उसमें आज भी जब बाहर तापमान -35 -40 होता है, अंदर एक छोटी सी अंगीठी और एक कंबल में आदमी आराम से रह सकता है क्योंकि वहाँ अंदर तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं जाता। और जितने नए मकान बने आप कॉन्क्रीट के देख लो, सारे माइनस में होगा टेम्परेचर अंदर। और इसी तरह बाड़मेर में जो हमने मिट्टी के घर बनाए, बाहर 50 डिग्री है और अंदर कभी 35-38 से ऊपर 40 टच नहीं करता, क्योंकि वो गर्म हवा होती है ऊपर छप्पर से या टाइल से बाहर निकल जाती है, और मिट्टी जो है वो गर्म होने में भी समय लेती है और गर्मी को छोड़ने में भी। तो दिन में तो रेगिस्तान में वो गर्म होती है धीरे धीरे, और रात में जब तापमान गिर जाता है तो वो गर्मी देती है, तो आपको अंदर तापमान की रेंज बड़ी बहुत कम हिलती है। तो ये चीज़, यही चीज़ हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि जो अपनी परंपरा है, यहाँ हमने देखे ढाईपुरा घर जो हुआ करते थे, तिबारी वाले जो घर हुआ करते थे, उसको सब छोड़ चुके हैं। आज कोई मिस्त्री नहीं मिलता हमें जो कहे कि मैंने बनाया है और मैं बना सकता हूँ, पर वो उस घर में आज भी आप बैठ के एक कप चाय पियो, आपको पता चलेगा कितना फ़र्क है तापमान में और कितनी सरलता से वो बने। और आप आज जाके देखो जो नुकसान हुआ था उन घरों में कितना कम नुकसान है बजाय उसके जो नए घर थे। और न केवल बाढ़ में बल्कि जो भूकंप, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, यहाँ भूकंप आने की बड़ी संभावना बनी हुई है। भूकंप में भी जो मिट्टी का घर होगा उसको हम इंग्लिश में फॉरगिविंग बोलते हैं कि वो आपको थोड़ी बहुत भूल चूक माफ़ करता है। अगर मकान हिलेगा तो मिट्टी हिलेगी, थोड़ी चरमराएगी और वहाँ पर बैठ जाएगी, लेकिन कंक्रीट ज़रा सा हिलेगा तो चटक के टूटेगा और गिरेगा। तो जो हमको माफ़ करने वाली हमारी अपनी मिट्टी है उसको हम भूल के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो महंगी भी पड़ती हैं, नुकसानदेह भी हैं। हर साल हम उसमें सर्दी और गर्मी में परेशान होते हैं, आपदा में परेशान होते हैं, फिर भी फैशन के पीछे उसमें भाग रहे हैं।
बात तो सही है अंशु जी की, अगर हमें पूर्व ही मौसम की जानकारी हो जाए तो हम त्रासदी से बच सकते हैं।
बिल्कुल सही साथियों, आपदाओं के कारण बहुत हद तक हम स्वयं हैं। हमारे समाज में विकास के नाम पर विनाश को बुलावा दिया जा रहा है।
जहां एक ओर गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कई बार अधूरी पड़ी सड़कें भूस्खलन की वजह बन रही हैं। कहीं डायनामाइटों का प्रयोग धरती में कंपन उत्पन्न कर रहा है तो कहीं पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान न देकर प्रकृति को भिन्न भिन्न तरह से हानि पहुंचाई जा रही है।
और तो और, विकास के नाम पर बड़े बांध भी आपदाओं को न्योता दे रहे हैं और एक शांत मदमस्त अपनी ही चाल में चल रही नदी जान की प्यासी बनती जा रही है।
बिल्कुल दोस्तों, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिमालय के ग्लेशियर तीव्रता से पिघल रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है।
और लगातार कटते पेड़, प्लास्टिक का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ही तो आपदा है।
शीतल जी, मुझे लगता है हमें अपने साथियों की समझ इस विषय पर और अधिक विकसित करनी होगी।
जी साथियों, बढ़ती जनसंख्या भी आपदा का कारण बन रही है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही तेजी से नदियों का रास्ता संकरा कर शहरीकरण हो रहा है, जिससे बहाव तेज होने पर नदियां वापस अपना रास्ता हजारों लाखों घर परिवारों को अपने साथ बहाकर बना ही लेती हैं।
हमारे आसपास कितने बदलाव लगातार हो रहे हैं, इसका अंदाजा शीतल जी हम इस बात से लगा सकते हैं कि मसूरी जैसी जगह जहां 4 फीट बर्फ गिरा करती थी, आज वहां 1 फीट बर्फ गिरना भी गनीमत समझा जा रहा है।
साथियों, 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में आपदा का वह भयानक मंजर तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश भर को हिला कर रख दिया था। और हम आपको अभी वहाँ के स्थानीय लोगों की बात भी सुना चुके हैं।
हाँ, भला भूल कैसे सकते हैं, इस त्रासदी ने तो कई परिवारों के दीपक ही बुझा दिए, हजारों लोग लापता हो गए और हजारों अपनी जान गंवा बैठे।
और जिसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। तो दोस्तों अब सोच क्या रहे हो, हम अपने आप से ही संकल्प लें कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आपदा को कम करने में कदम बढ़ाएंगे।
तो दोस्तों अब नोट कर लीजिए हमारा पता और भेजिए अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं।
हमारा पता सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी, मसूरी रोड, चंबा, टिहरी, गढ़वाल, और पिन कोड नंबर है 2491945।
और साथ ही नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर 9412911333 और 9760910461। तो साथियों अब लेते हैं कार्यक्रम से अलविदा। नमस्कार।
सामुदायिक रेडियो चाहियो सुनो सुनो सभी, सामुदायिक रेडियो चाहियो सुनो सुनो सभी, हम सब की आवाज, हमारा रीति रिवाज, बोली भाषा मूलक की, हमारा साज बाज, नहीं भूला हम कभी। सामुदायिक रेडियो चाहियो सुनो सुनो सभी, सामुदायिक रेडियो चाहियो सुनो सुनो सभी।